ये आकाशवाणी श्रीनगर है, शबीर उज जमा से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास नए अरकान पार्लियमान को हलफ दिलाने से शुरू, नए स्पीकर का इंतखाब बुध के रोज। नई सरकार आईन का तकद्दस बरकरार रखते हुए हर एक को साथ लेकर आगे बढ़ने की मुतमन्नी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की तरफ से शहर श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी के बतौर तस्लीम, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दी कारीगरों को मुबारकबाद। और नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में सीबीआई की तरफ से तहकीकात शुरू, महाराष्ट्र से मामले में मुलविस दो मुश्तबे अफराद गिरफ्तार। अब पेश है खबरें तफसील से। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास आज से हाल ही में मुंतखब हुए नए अरकान पार्लियमान को हलफ दिलाने से शुरू हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो लोकसभा के लीडर हैं, ने ऐवान के रुकन की हैसियत से सबसे पहले हलफ लिया। अबूरी स्पीकर भारत रुहारी महताब ने नरेंद्र मोदी को हलफ दिलाया। इसके बाद चेयरपर्सन के पैनल ने हलफ लिया, जो स्पीकर का इंतखाब होने तक लोकसभा की कार्रवाई चलाने में महताब की मुआवनत करेंगे। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह और फगन सिंह कलस्ते ने चेयरपर्सन पैनल के अरकान की हैसियत से हलफ लिया। अलबत्त कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सुरेश, डीएमके पार्टी के टीआर बालू और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने पैनल के अरकान के तौर पर हलफ नहीं लिया। बाद में मरकजी वजीरों अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, जितिन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, डॉ वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, चिराग पासवान और दीगर अरकान ने लोकसभा के अरकान की हैसियत से हलफ लिया। इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अबूरी स्पीकर भारत रुहारी महताब को हलफ दिलाया। पार्लियामेंट के इस इजलास के दौरान बुध के रोज नए स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। जुमेरात को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दोनों ऐवानों के मुश्तरक इजलास से खिताब करेंगी। राज्यसभा का इजलास जुमेरात को ही शुरू होगा। पार्लियामेंट का इजलास अगले महीने की 3 तारीख को खत्म होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का इजलास विकसित भारत की तामीर के आजम के साथ शुरू हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार हर एक को साथ लेकर मुल्क की खिदमत करने और आवाम की उमंगें पूरी करने के लिए लगातार कोशिश करेगी। इजलास से कबल पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरकार चलाने के लिए अक्सरियत की जरूरत होती है, लेकिन मुल्क का निजाम चलाने के लिए इत्तेफाक राय अहमियत का हामिल है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी सरकार हर एक को साथ लेकर और आईन का तकद्दस बरकरार रखते हुए आगे बढ़कर तेजी के साथ फैसले करना चाहती है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के आवाम अपोजिशन से अच्छे इकदाम की उम्मीद करते हैं। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जमहूरियत के विकार को बरकरार रखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के आवाम कार्रवाई में खलल नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को एक जिम्मेदार अपोजिशन की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि नई लोकसभा के अरकान आम आदमी की इन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने आज नीट इम्तिहान, मगरबी बंगाल में हालिया रेल हादसे और अफराती जर में इजाफे के मामले पर हुकूमत की नुक्तचीनी की। पार्टी के सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इन मामलों को लेकर खामोश है। पार्लियामेंट से बाहर मीडिया के साथ बात करते हुए कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत आईन के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसलिए हिजब इख्तलाफ के अरकान ने आज पार्लियामेंट के इजलास के पहले दिन अपने हाथों में आईन की कापियां रखी थीं। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के मेंबर पार्लियामेंट आज आईन की कापियां लेकर पार्लियामेंट पहुंचे। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, बाएं बाजू और दीगर अरकान पार्लियामेंट हाउस के अहाते में आईन की कापियां लेकर जमा हो गए। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मलिक अर्जुन खड़गे के अलावा डीएमके के टीआर बालू और टीएमसी के कल्याण बैनर्जी समेत दीगर अरकान ने नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव समेत पार्टी के दीगर मेंबरों ने भी आज इजलास के पहले दिन आईन की कॉपियां अपने साथ रखी थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उन तमाम नव मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी है जिन्होंने आज लोकसभा के पहले इजलास में हल्फ लिया। उन्होंने खसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर की अवामी नुमाइंदगी करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को मुबारकबाद पेश की और हुकूमत पर जोर दिया कि इंजीनियर रशीद को हल्फ लेने के लिए जमानत दी जाए ताकि उन्हें अपने हल्के इंतखाब के लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिल सके। महाराष्ट्र में नांदेड़ के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस होने के शुबह में संजय तुकाराम जादव और जलील उमर खान पठान नामी दो अफराद को हिरासत में लिया है। ये दोनों ही जिला परिषद स्कूलों में टीचर हैं और लातूर में एक प्राइवेट कोचिंग इदारा चलाते हैं। इसके अलावा लातूर के शिवाजी नगर थाने में भी चार अफराद के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। इनमें धाराशिव जिले का रहने वाला इराना मशनाजी और दिल्ली का गंगाधर शामिल हैं। इस दौरान सीबीआई ने नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सीबीआई जराये के मुताबिक ये एफआईआर वजारत तालीम के महकमे हायर एजुकेशन में तैनात डायरेक्टर की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई ने खसूसी टीमें तश्कील दी हैं जिन्हें पटना और गोधरा भेजा जा रहा है जहां मकामी पुलिस ने भी इस सिलसिले में कई मामला दर्ज किए हैं। शहरी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने बाजाबता तौर पर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर तस्लीम किया है। ये एजाज शहर के भरपूर विरसे और इसके कारीगरों की गैरमामूली महारतों की निशानदही करता है जिनकी लगन और फनकारी ने आलमी सतह पर पजीराई हासिल की है। मनोज सिन्हा ने इस अहम कामयाबी पर दिल्ली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये पहचान हमारे कारीगरों की मेहनत और उनकी गैरमामूली सलाहियतों का जीता जागता सबूत है और ये एजाज न सिर्फ उनकी लगन की तौसीक करता है बल्कि श्रीनगर की सकाफती विरसे को भी उजागर करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की दस्तकारी और हैंडलूम सेक्टर के लिए मुस्तकिल हिमायत का मुजाहिरा किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम जम्मू कश्मीर के कारीगरों की तरफ से तैयार किए गए तोहफे आलमी रहनुमाओं को पेश करके खित्ते की दस्तकारी को मुअस्सर तौर पर फरोग दे रहे हैं। काबिले जिक्र बात है कि श्रीनगर की दस्तकारी अपनी खूबसूरती और मुनफरिद कारीगरी से दुनिया भर को अपनी तरफ मुतवज्जुह करती है। वाज़ेह रहे कि ये कामयाबी श्रीनगर को 2021 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट्स के तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद हासिल हुई है। सन्नत तिजारत के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कारोबारी माहौल तेजी से बदल रहा है और ये मुल्क भर में सरमायाकारी के लिए आला मुकाम के तौर पर उभर रहा है। इन बातों का इजहार कमिश्नर मौसुफ ने आज गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में जेएनके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए किया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर जम्मू कश्मीर में एक उभरता हुआ शोबा है और इसमें अफरादी कुव्वत के साथ साथ मराआत के लिहाज से भी बेपनाह मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क में स्टार्टअप्स के एक मरकज के तौर पर उभर रहा है क्योंकि यहां गुज़िश्ता साल के मुकाबले स्टार्टअप्स के कयाम में तीन गुना इजाफा हुआ है। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ताउन से किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन संदीप नरोला की कयादत में एक वफद ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफद ने यूटी में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर को फरोग देने और नई एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार के मौके पैदा करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج ایک میٹنگ کے دوران تمام متعلقین پر زور دیا ہے کہ وہ گلیشیئروں کی جھیلوں کے پھٹنے سے پیدا شدہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بامانے تحقیق کریں اور یوٹی میں اس طرح کے ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات وضع کریں۔ چیف سیکرٹری نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمے کو ہدایت دی کہ وہ گلیشیئروں کے ماہرین سمیت دیگر ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دیں جو ان تمام جھیلوں کا دورہ کرے گی اور موقع پر ہی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیم بنیادی سطح پر حالات کا مشاہدہ کر کے اپنی سفارشات سامنے رکھے گی۔ چیف سیکرٹری نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو فنڈنگ کے لئے بھیجے گئے پروجیکٹوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ محکمہ دیہی ترقی و پنچایتی راج کے سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری، جو شری امرناتھ جی یاترا کے نوڈل آفیسر بھی ہیں، نے آج بالتل کے دورے کے دوران یاترا کے لئے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر گاندربل شیام بیر اور دیگر اعلی حکام بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بالتل میں بجلی اور پانی کی فراہمی سمیت دیگر سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ضروری ہدایات دیں کہ یاتریوں کی سہولت کے لئے تمام انتظامات کو بروقت مکمل کیا جائے۔ صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا محکمہ یاتریوں کے لئے ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لئے پرعزم ہے، اور ساتھ ہی متعلق افراد کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر یاتری کو صفائی کی بہترین سہولیات تک رسائی حاصل ہو۔ انہوں نے متعلقہ کیمپ ڈائریکٹرز کو اپنے کیمپوں میں سہولیات کی دستیابی کا باقاعدگی سے جائزہ لینے کے لئے ضروری ہدایات بھی دیں۔ وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت سید حمید شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آج ان کے آستان عالیہ واقع سید حمید پورہ نواب بازار میں ایک پروکار اور روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا، جس میں ختمات المعظمات، درود و اذکار، خاص کر مولود خوانی کی روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ اسی دوران حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری حبی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک کل 25 جون سے 27 جون تک ان کے آستان عالیہ واقع نوشہرہ سری نگر میں منایا جا رہا ہے۔ ادھر بارسو اونتی پورہ میں کل 25 جون کو فقیر ملت حضرت کمال صاحب کا یوم وصال منایا جائے گا۔ وہاں آج رات بھر شب بیداری کی جائے گی۔ اس سلسلے میں وہاں عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد موجود ہے۔ بارہویں پاسپورٹ سیوا دیوس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایل جے شنکر نے ملک اور بیرون ملک سبھی پاسپورٹ حکام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر اپنے پیغام میں ڈاکٹر جے شنکر نے شہریوں پر مرکوز خارجہ پالیسی کے بھارت کے مشن کو آگے بڑھانے میں ان کی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے پاسپورٹ مہیا کرانے کے پروگرام میں قابل قدر پیش رفت کو وسیع پیمانے پر تسلیم کیے جانے کو بھی سراہا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ وزارت خارجہ نے سال 2023 میں شہریوں کو پاسپورٹ سے وابستہ تقریباً 1,65,00,000 خدمات بہم پہنچائی۔ انہوں نے گزشتہ سال پاسپورٹ اور دیگر متعلقہ خدمات میں تقریباً 15% سالانہ کی شرح ترقی کی بھی ستائش کی۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کی خاطر وزارت نے اب تک 440 پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر شروع کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 25 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پاسپورٹ پولیس ایپ شروع کی گئی ہے، جس کے دائرے میں تقریباً 9,000 تھانے آئیں گے۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ سیوا نظام کو ڈیجی لاکر نظام کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے تاکہ کاغذ کے استعمال کے بغیر یہ عمل مکمل ہو سکے۔ سعودی عرب میں فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک سعودی عرب سے حجاج کرام کی 3 پروازیں سری نگر پہنچی ہیں۔ انتظامیہ نے ہوائی اڈے سے اپنے آبائی مقامات کی طرف حجاج کی آرام دہ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لئے خاطر خواہ انتظامات کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 29.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ آکاش وانی سری نگر ہے، شبیر الزماں سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔